ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೀಭ್ಯ ನಮೋ ಅರ್ಹಂತಾಣಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ನಮೋ ಆಯಿರ್ಯಾಣಂ ನಮೋ ವಜ್ಜಾಯಾಣಂ ನಮೋ ಲೋಯ ಸವ್ಸಾಹೂಣಂ ಏಸು ಪಂಚ ನಮೋ ಯಾರೋ ಸವ್ ಪಾವಪಣಾಸನೋ ಮಂಗಲಾಣಂ ಚ ಸವ್ವೇಸಿ ಪಢಮಂಗಲಂ ಚತ್ತಾರಿ ಮಂಗಲಂ ಅರ್ಹಂತು ಮಂಗಲಂ ಸಿದ್ಧ ಮಂಗಲಂ ಸಾಹು ಮಂಗಲಂ ಕೈವಲಿ ಪಣ್ಣತ್ತು ಧಮ್ಮೋ ಮಂಗಲಂ ಚತ್ತಾರಿ ಲೋಗುತ್ತಮ ಅರ್ಹಂತು ಲೋಗುತ್ತಮ ಸಿದ್ಧ ಲೋಗುತ್ತಮ ಸಾಹು ಲೋಗುತ್ತಮ ಕೇವಲಿ ಪಣ್ಣತ್ತೋ ಧಮ್ಮೋ ಲೋಗುತ್ತಮ ಚತ್ತಾರಿ ಶರಣಂ ಪವ್ವಜ್ಜಾಮಿ ಅರ್ಹಂತ ಶರಣಂ ಪವ್ವಜ್ಜಾಮಿ ಸಿದ್ಧ ಶರಣಂ ಪವ್ವಜ್ಜಾಮಿ ಸಾಹು ಶರಣಂ ಪವ್ವಜ್ಜಾಮಿ ಕೇವಲಿ ಪಣ್ಣತ್ತು ಧಮ್ಮೋ ಶರಣಂ ಪವ್ವಜ್ಜಾಮಿ. ಕ್ಷಣ ಭಂಗುರ್ ಜೀವನ ಕೀ ಕಲಿಕಾ ಕಲ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಖಿಲಿ ನಖಿಲಿ ಮಲಯಾಚಲ ಕೀ ಶುಚಿ ಶೀತಲ ವಾಯು ಸುಗಂಧ ಸಮೇತ ಮಿಲಿ ನ ಮಿಲಿ ಕಲಿಕಾಲ ಕುಠಾರ ಲಿಯೆ ಫಿರ್ತಾ ಕಲಿಕಾಲ ಕುಠಾರ ಲಿಯೆ ಫಿರ್ತಾ ತನ್ ನಮ್ರ ಸೆ ಚೋಟ ಝಿಲಿ ನ ಝಿಲಿ ಭಜಲೆ ಅರಿಹಂತ ಅರಿ ರಸನಾ ಫಿರ್ ಅಂತ ಸಮಯ ಮೇ ಹಿಲಿ ನ ಹಿಲಿ. ನಮೋ ಅರಹಂತಾಣಂ, ಸಾತ್ ಅಕ್ಷರೋ ಕಾ ಅಪನ್ನೆ ಸಾತ್ ಸ್ಥಾನೋ ಪರ್ ಏಕ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಧ್ಯಾನ ಕಿಯಾ ಥಾ. ಯದ್ಯಪಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಉಸ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಲಿಖಾ ಹೈ ಕಿ ಆಧೆ ಕ್ಷಣ ಕಾ ಧ್ಯಾನ ಔರ್ ಏಕ್ ಕ್ಷಣ ಚಾರ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಾ ಹೈ ತೋ ಆಧಾ ಕ್ಷಣ ದೋ ಮಿನಿಟ್ ಕಾ ಹೈ. ದೋ ಮಿನಿಟ್ ನಮೋ ಅರಿ ಯ ಅರ ನಮೋ ಅರ ಹಂತಾಣಂ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಹೋಗರ್ಕೆ ಯೇ ಜೊ ಉತ್ತಮ ಧ್ಯಾನ ಉಸ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮೂಲಾಚಾರ ಗ್ರಂಥ ಮೇ ಗಾಥಾ ಇದೆ ಫಲ್ಟಣ ವಾಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಕಿ ಜೊ ಸಾಧು ಜೀವನ ಭರ ತಪಸ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹನ್ ಜ್ಞಾನ ಕೆ ವಿಶಾಲ ಸಾಗರ್ ಕೋ ಹೃದಯಂಗಮ ಕರ್ ಲೇತೆ ಹೈ ಚಿಂತನ ಮನನ ಮನನ ಮಂಥನ ಶಕ್ತಿ ಸೇ ವಿ ಸಂಪನ್ನ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಔರ್ ಜಿನ್ಕಾ ಶಾರೀರಿಕ ಬಲ್ ಭಿ ಅಧಿಕ ಹೋತಾ ಹೈ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಶ್ರೀ ನೇ ದೀಕ್ಷಾ ಸೇ ಪಹಲೆ ಶಿಖರ್ ಜೀ ಕಿ ವಂದನಾ ಕೆ ಸಮಯ ಏಕ ದಾದಿ ಅಮ್ಮ ಕೋ अपनी पीठ पर बैठा लकर वंदना कराई थी। इससे अनुमान लगाइए कि शारीरिक बल कितना होगा उनके पास। तो ऐसे बलवान साधु भी अंत समय में जब गिनी चुनी श्वास बची हैं, तब संपूर्ण शास्त्रों का चिंतन नहीं कर पाते, तो उस समय एक पद या दूसरा पद, कोई भी पद, नमोकार का कोई ना कोई पद उनके लिए कार्यकारी हो जाता है। और उस गाथा में लिखा है कि सात अक्षरों का उत्तम ध्यान लगाने वाले साधु अपनी बुद्धि को अन्यत्र न जाने देने वाले साधु उत्तम स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। बस उसमें एक विशेषता बताई है कि वो ध्यान भावेण, भावेण का अर्थ होता है सम्यक तो पूर्वकम, श्रद्धया, श्रद्धा भाव के साथ, सम्यक तो पूर्वक, केवल इन सात अक्षरों का ध्यान लगाने वाले साधु उत्तम स्थान को प्राप्त करते हैं। नामो अर हंता नम, अद्भुत ध्यान है। तो इस ध्यान से या इस जप से जिस मंत्र को जपा जाता है उसको जाप्य कहते हैं। और जपने को जप अथवा जाप भी कहते हैं। जपनम जपह जापो वा, तो जाप्य का जप किया जाता है। और इस ध्यान से उत्तम स्थान को कैसे प्राप्त करते हैं वे साधु, क्योंकि जप से और पदस्थ ध्यान से तो शुभोपयोग होता है और शुभोपयोग से पुण्य संचय होता है। सम्यक दृष्टि जीव है, निष्काम भक्ति पूर्वक अगर आराधना कर रहे हैं नमोकार के प्रथम पद की, तो उनको सातिशय पुण्य का बंध होगा, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होगा। संवर निर्जरा की क्या व्यवस्था है, तो इस विषय में केवल नमो अरहंताणम, केवल इस एक पद को लेकर जय धवला ग्रंथ में वीरसेन आचार्य महाराज ने एक बहुत ही अद्भुत बात कही है। आज भाग्य संयोग से जय धवला का स्मरण हुआ है, तो उस विषय को अपन पढ़ लेते हैं। कितना सुंदर कथन है। धवला और जय धवला दोनों के मंगलाचरण में वीरसेन आचार्य महाराज ने जो क्रम रखा है उसमें सबसे पहले तो परमात्मा को नमस्कार किया, और तदुपरांत आगम को नमस्कार किया, और उसके उपरांत गणधरों को नमस्कार किया और पूर्वाचार्यों को नमस्कार किया। तो अभिप्राय ये हुआ कि जो नमस्कार का क्रम है उसमें परमात्मा तो देव कहलाते हैं, तो सबसे पहले देव को नमस्कार किया। वो देव गति के देव नहीं होते, आराध्य देव होते हैं, सबके देव होते हैं, देवों के भी देव होते हैं, देवाधिदेव, देवानाम अधिदेव इति देवाधिदेव। अधिदेव इत्यस्य को अर्थ वंदनीय इत्यर्थ, देवों के अधिदेव, अधिदेव का क्या अर्थ है? तो बोले जो वंदनीय है, देवों के लिए भी जो वंदनीय है। ऐसे शतेंद्र वंद्य जिनेंद्र देवाधिदेव कहलाते हैं। तो उनको सर्वप्रथम नमस्कार किया, तदुपरांत अंगंग बज्झ निम्मी अणाय मज्झंत निम्मलंगाय सुय देवय अंबाय नमोसया चक्षुमय्याय। सरस्वती की प्रतिमा को नमस्कार किया, यानी जिनवाणी को नमस्कार किया। वो प्रतिमा कैसी होती है? तो आकृति यद्यपि देवी जैसी होती है, परंतु वह देवगति की देवी रूप नहीं है, वह आगम रूप है। अंगंग बज्झ निम्मीय अर्थात अंग और अंग बाह्य से रचित है। क्या रचित है? अणाय मज्झंत निम्मलंगाय, ये दिव्य ध्वनि कब से है, ये जिनागम कब से है, इस लोक में इसका अस्तित्व, जिनागम का अस्तित्व कब से है? तो आचार्य कहते हैं अनाई, अनादि। और अभी जो इसका अस्तित्व चल रहा है, क्या ये मध्य है? तो कहते हैं कि नहीं, जब जब वर्तमान काल पड़ेगा वो मध्य ही रहेगा। और अंत है क्या? तो कहते हैं कि नहीं, भविष्य में भी कभी उसका अंत नहीं होगा। भरत ऐरावत क्षेत्र में श्रुत तीर्थों का विच्छेद होता है। जैसे अभी इस हुंडावसर्पिणी काल में जो श्रुत तीर्थ है अर्थात जो आगम परंपरा है, आगम धारा है, वह महावीर निर्वाण के 20,317 वर्ष में विच्छिन्न हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। धर्म तीर्थ पूरे 21,000 वर्ष चलेगा, लेकिन ये श्रुत तीर्थ 20,317 वर्ष चलेगा। तिलोय पंडित्ति में गाथा आती है, लेकिन विदेह क्षेत्र में उसका अस्तित्व जीवंत रहेगा और जयवंत रहेगा। यानी विदेह क्षेत्र में वो अस्तित्व तो रहेगा आगम का, तो अपन ये नहीं कह सकते कि इस मनुष्य लोक से आगम चला गया तो उसका कभी अंत नहीं हो सकता। इसलिए अनादि, अमध्य, अनंत, निम्मलंगाय, अंग और अंग बाह्य से रचित, अनादि मध्यांत पवित्र शरीर है जिनका। ये सरस्वती माता का वर्णन, शरीर का वर्णन कर रहे, देखिए। और ये किनका शरीर है? चक्षुमयी आये सुय देवय आये, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नेत्र से संपन्न श्रुत देवता अर्थात सरस्वती देवी रूपी अंबाए मां। आचार्य वीरसेन स्वामी मां कह रहे हैं, सयानमु, सदैव नमस्कार करता हूं सरस्वती माता को, मैं सदैव नमस्कार करता हूं। कितना सुंदर पद है ये, यानी प्रतिमा रूप में सरस्वती देवी भी आचार्यों के द्वारा वंदनीय है, नमस्करणीय है। तो ये एक बड़ी सुंदर बात थी। धवला जय धवला ग्रंथ सामने है, तो धवल ग्रंथ से अपन ने नमो अरहंताणम का अर्थ पढ़ा, और जय धवला से अपन नमो अरहंताणम की महिमा पढ़ लेते हैं। क्या कर रहे हैं महिमा में? व्यवहार नयम पड़ुच्छ पुण गोदम सामिना चदु वीसन्नम अनियोग दाराणाम आदिये मंगलम कदम। चौबीस अनियोग द्वारों के प्रारंभ में गौतम स्वामी ने व्यवहार नय की अपेक्षा करके मंगलाचरण किया है, और नच व्यवहार नौ चप्पलो, व्यवहार नय जो होता है वो असत्य नहीं होता, तत्तो व्यवहारणु व्यवहारानुसारी शिष्याणम पौत्ति दंसनादु, उसके कारण ही व्यवहार का अनुसरण करने वाले शिष्यों की प्रवृत्ति देखी जाती है। जो बहुजीवाणुग्रहकारी व्यवहारणो सोचिव समस्तिदव्योत्ति मणिनावहार्य गोदम थेरेण मंगलं तत्थ कयम। ये बहुत जीवों का उपकारक करने वाला जो व्यवहार न है उसका हमें ग्रंथ रचना के प्रारंभ में आश्रय लेना चाहिए, ऐसा अपने मन से निश्चय करके गौतम स्थविर अर्थात इंद्रभूति गौतम गणधर ने तथ मंगलम कयम, 24 अनुयोग द्वारों के प्रारंभ में मंगलाचरण किया है। अब इसके तीसरे अनुच्छेद में वीरसेन आचार्य लिखते हैं, पुण्य कम्म बंधत्थीणम देशव्याणम मंगलकरणम जुत्तम न मुनीणम कम्मक्खय कंकुवाणमिति नवोत्तम जुत्तम। प्राकृत भाषा है, नमोकार मंत्र की ही भाषा है, हम इसकी वाचना करते हुए अर्थ कर रहे हैं। बहुत सुंदर वचन है। आचार्य कह रहे हैं, कोई प्रश्न करते हैं कोई शिष्य कि पुण्य कर्म का बंध जिनको इष्ट है, ऐसे देशव्रति अर्थात अनुव्रतियों के लिए मंगलाचरण करना योग्य है? हम मानते हैं कि अनुव्रतियों को पुण्य की आवश्यकता है, तभी तो महाव्रति बनकर आगे बढ़ेंगे। न मुनीणम कम्मक खय कंकुवाणमिति, लेकिन जो कर्मों के क्षय की आकांक्षा रखने वाले मुनिराज हैं, उन मुनिराजों को मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मंगलाचरण करने से पुण्य का बंध होगा, और साधु जो है वो पुण्य और पाप सबसे मुक्त होने के लिए साधु बने। इदि न वोत्तुम जुत्तम, आचार्य वीरसेन स्वामी उस शिष्य को रोकते हुए बोलते हैं कि ऐसा कहना उचित नहीं है। शिष्य प्रश्नवाचक मुद्रा में गुरु की ओर दृष्टिपात करते हुए उत्तर की प्रतीक्षा करता है। अभिप्राय स्पष्ट है कि ऐसा कहना उचित क्यों नहीं है, क्योंकि नमस्कार करना शुभोपयोग है और शुभोपयोग से पुण्य का बंध होता है, और पुण्य की आवश्यकता अनुव्रति क्यों अनुव्रतियों को है, महाव्रतियों को नहीं है, मुनिराजों को नहीं है, तो फिर मुनिराज क्यों करें नमस्कार। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा कहना उचित नहीं है, क्यों? पुण्य बंध हे उत्तम पड़ी विशेष अभावादु मंगल सेव सराग संजमस्वि परिचाग प्रसंगादो। आचार्य कह रहे हैं कि पुण्य बंध का जो हेतु है शुभोपयोग, वो श्रावकों में और मुनियों में समान रूप से पुण्य का बंध करता है, ठीक है ना। श्रावक अगर शुभोपयोग करेगा तो उसको पुण्य का बंध होगा, मुनि अगर शुभोपयोग करेंगे तो उनको पुण्य का बंध होगा। तो पुण्य बंध का कारण श्रावकों में और मुनियों में अलग अलग नहीं है, शुभोपयोग ही पुण्य बंध का कारण है दोनों में। तो अगर आप ये कहते हो, शिष्य से कह रहे हैं गुरु, कि नमस्कार करने से साधु को पुण्य का बंध होगा, इसलिए साधु नमस्कार न करें, श्रावक ही नमस्कार करें, तो आचार्य उत्तर देते हैं कि मंगल सेव, बहुत सुंदर उत्तर है कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि मंगलाचरण साधु न करे, तो फिर साधु को शुभोपयोग के और कार्य भी छोड़ने पड़ेंगे, ध्यान रखना। और शुभोपयोग के और कार्य कौन से हैं साधु के? तो बोले सराग संयमस्वि, साधु के पास जो छठे सातवें गुणस्थान में सराग संयम है, प्रवृत्ति रूप जो संयम है, वो भी तो शुभोपयोग है। तो सराग संयमस्वि परित्याग प्रसंगादो, उसके परित्याग का भी प्रसंग आ जाएगा। अगर शुभोपयोग के त्याग का आश्रय आग्रह करोगे साधु के लिए, तो अभिप्राय स्पष्ट है कि शुभोपयोग श्रावकों में भी हो सकता है, साधुओं में भी हो सकता है, और दोनों ही पुण्य का संचय कराते हैं। तो अगर कोई प्रश्न करता है कि नहीं, साधु को पुण्य का संचय ना करके पुण्य की और पाप की सब कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए, क्योंकि उनका लक्ष्य मोक्ष है, कर्मक्षय की आकांक्षा रखनी चाहिए उनको, और इसीलिए तो उन्होंने दीक्षा ली है, तो आचार्य कहते हैं कि अगर ऐसा कहोगे तो ठीक है, हम साधु मंगलाचरण नहीं करेंगे, तो साधु शुभोपयोग के अन्य कार्य भी नहीं करेंगे। और वो अन्य कार्य क्या है? छठे सातवें गुणस्थान का जो सराग संयम है, वो भी शुभोपयोग रूप है, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। नच एवं, पर हे शिष्य, हे वत्स, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? शुभोपयोग का त्याग क्यों नहीं बताया साधु को? तो बोले कि शुभोपयोग का त्याग बताने से तेन संयम परित्याग प्रसंग भावेण निव्वय गमना भाव प्रसंगादो। सराग संयम छोड़ देंगे तो फिर वीतराग संयम कैसे प्राप्त होगा? संयम से वीतराग संयम, सराग संयम की भूमिका में जाकर राग पर विजय प्राप्त करने से प्राप्त होता है वीतराग संयम। असंयम से वीतराग संयम प्राप्त नहीं होता, देश संयम से वीतराग संयम प्राप्त नहीं होता। तो आचार्य कहते हैं सराग संयम के परित्याग का प्रसंग उत्पन्न होने से निर्वाण गमन का भी अभाव प्रसंग को प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि सराग संयम के बिना वीतराग संयम में नहीं जा सकते, और वीतराग संयम के बिना मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। और हे शिष्य एक बात और सुन लो, ये शुभोपयोग अथवा ये सराग संयम मात्र पुण्य बंध का कारण नहीं है। क्यों? तो आचार्य लिख रहे हैं, सराग संयमो गुण सेढ़ी निज्जराए कारणम तेन बंधादो मोक्षो असंखेज गुणोत्ति सराग संयमे मुनीणम वट्टणम जुत्तमिदि न पच्चवट्ठाणम कायव्वम। बहुत सुंदर वाक्य है। आचार्य कहते हैं कि सराग संयम गुण श्रेणी निर्जरा का कारण है, इसलिए बंध की अपेक्षा से उस सराग संयम द्वारा मोक्ष असंख्यात गुणित है। देखो गुण श्रेणी में भी कितनी गुण श्रेणी है, संख्यात गुण श्रेणी नहीं है, असंख्यात गुण श्रेणी है। उसको सूचित करते हुए आगामी पंक्ति में लिख रहे हैं कि बंध की तुलना में देखो मुनिराजों को छठे सातवें गुण स्थान में सातिशय पुण्य बंध होता है। जब वो भक्ति करते हैं वैयावृत्ति तीर्थंकर नाम कर्म तक का बंध होता है उनको, तो इतने विशाल पुण्य का बंध करते हुए भी आचार्य लिख रहे हैं कि तीन बंधा दो, उस बंध से मोक्षो असंख्य गुण, मोक्ष असंख्यात गुणित होता है। अर्थात जितना बंध हो रहा है, मान लो पांच परमाणु पुण्य का बंध हुआ, तो पांच में आप असंख्यात का गुणा कर देना, उतने पाप के परमाणु नष्ट हो गए उस अकेले सराग संयम से। तो वह अकेला शुभोपयोग केवल बंध का कारण नहीं होकर वो इतनी निर्जरा का कारण भी होता है। अब यहां पर कोई प्रश्न कर सकता है कि नहीं ये बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि निर्जरा तो रत्नत्रय से होती है और मुनिराज जो है उनके पास सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र भी है। तो सराग संयम के काल में जो बंध हो रहा है वो सराग संयम से हो रहा है और जो निर्जरा हो रही है वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से हो रही है। ऐसी व्यवस्था बना लो तब बात हमें स्वीकार हो जाएगी। आप सराग संयम से मोक्ष कैसे कह सकते हैं? सराग संयम से असंख्यात गुणी निर्जरा कैसे कह सकते हैं? ये प्रश्न उठ सकता है, नहीं उठ सकता? उठ सकता, अब हमने उठा दिया तो आपके अंदर भी उठ ही गया समझ लो। तो अब यहां तो आचार्य कह रहे हैं कि इससे इतना मोक्ष होता है, असंख्यात गुणित मोक्ष होता है, जितना बंद हो रहा है उससे असंख्यात गुना मोक्ष होता है, इसलिए सराग संयम में मुनीनम वट्टणम जुत्तम, सराग संयम में मुनियों का वर्तना अर्थात प्रवृत्त होना युक्त है। यदि न पच्चवट्ठाणम कायवम, इसलिए शुभोपयोग का प्रत्यवस्थान नहीं करना चाहिए, यानी शुभोपयोग का त्याग नहीं करना चाहिए। ये बात आचार्य महाराज ने कह दी। अब प्रश्न तो प्रश्न रह गया बीच में जो हमने एक उठा दिया कि रत्नत्रय से निर्जरा हो रही है और सराग संयम से बंद हो रहा है, ऐसा मानने में क्या आपत्ति है? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में जो भी स्वाध्याय करने वाले हैं उनके अंदर ये प्रश्न तो आना ही आना है। देवायु के आश्रव क्या बताए सर्वार्थ तत्वार्थ सूत्र में? इसी सराग संयम से वो सूत्र प्रारंभ होता है छठे अध्याय का। सराग संयम संयमा संयम सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वंच, ये सब देवायु के आश्रव बताए हैं। क्या कहा वहां पर? सराग संयम देवायु का बंध कराता है। तो ये सिद्ध हो गया कि सराग संयम बंध का कारण है और देवायु पुण्य प्रकृति है, तो पुण्य बंध का कारण सिद्ध हुआ। और क्या क्या है देवायु के आश्रव? तो बोले संयमा संयम, संयमा संयम भी देवायु का आश्रव है और अकाम निर्जरा, यानी संकल्प पूर्वक निर्जरा नहीं की कामना नहीं की निर्जरा करने की, लेकिन प्रवृत्त प्रसंग ऐसा आ पड़ा कि मान लो भोजन नहीं मिला किसी दिन तो समता भाव से उसको सहन कर लिया। तो समय जो आयु का आश्रव होगा वो देवायु का होगा, या फिर परिवार से अलग जाना पड़ा तो जितने काल तक अलग रहे उतने काल तक बिना संकल्प के ब्रह्मचर्य पालन कर लिया तो भी देवायु का आश्रय हो जाएगा। इसको अकाम निर्जरा कहते हैं, कामना किए बिना पाप की निर्जरा हो रही है और पुण्य का संचय हो रहा है। और बाल तपांसी, बाल तपांसी का अर्थ होता है सम्यक्त रहित तपस्या। बिना सम्यक के भी अगर कोई तप करता है तो तप करने से देवायु का आश्रय होता है। और सम्यक्त उच्च सम्यक्त हो किसी जीव के पास तब भी देवायु का आश्रय होता है। कोई मनुष्य गति में कोई सम्यक दृष्टि है, तिर्यंच गति में कोई सम्यक दृष्टि है, तो आयुबंध का काल आने पर उसको कौन सी आयु बंधेगी? मात्र देवायु, और वो भी वैमानिक देवों की आयु का बंध होगा उसको। भवनवासी, वानव्यंतर और ज्योतिष्क देवों में वो नहीं जा सकता, सम्यक दृष्टि जीव है। और यहां पर एक पंक्ति और रह गई है, वो बहुत ही महत्व की है, उसमें आपको थोड़ा समाधान मिल सकता है उससे, या फिर हम आपको मदद करेंगे थोड़ा समाधान निकालने की। क्या? अरहंत नमोकारो संपहिय बंधादो असंखेज गुण कम्मखय कारोति तत्थवि मुनीनम पवुत्ति पसंगादो उत्तम च। अरहंत को किया हुआ नमस्कार, नमो अरहंताणम। देखो कोई मुनिराज है, उन्होंने नमो अरहंताणम किया, वचनों के उच्चारण पूर्वक हाथ जोड़कर किया छठे गुण स्थान में, और सप्तम गुण स्थान में वो सप्त स्थानों पर ध्यान लगा करके नमो अरहंताणम का ध्यान किया, प्रमत अप्रमत दोनों प्रकार की अवस्थाओं में ध्यान किया, नमोकार की आराधना की। तो वो जो अरहंत को किया हुआ नमस्कार है वह संपहीय बंधादो सांप्रतिक अर्थात तत्कालीन बंध की अपेक्षा से बंध हो रहा है कि नहीं? नमो अरहंताणम से निश्चित हो रहा है। किसका बंध हो रहा है? पुण्य प्रकृतियों का। आहारो अपमत्ते, आहारक द्विक जो पुण्य प्रकृति है जिससे साधु के सिर से एक आकृति निकलती है श्वेत वर्ण की, शुभ्र वर्ण की, और वो एक हाथ की आकृति होती है, छठे गुणस्थान में निकलती है, बंधती सातवें गुणस्थान में, याद ध्यान में रखने की बात है कि वो अप्रमत्त गुणस्थान में ध्यान में बैठे हुए हैं और उनको आहारक प्रकृति का बंध हो रहा है। महान पुण्य प्रकृति हो, असाधारण पुण्य है। और जब उसका उदय आता है तो छठे गुणस्थान में उनके सिर से एक आकृति निकलती, बिल्कुल मुनिराज जैसी आकृति निकलती है, और अंतर मुहूर्त में छठे गुणस्थान का काल पूर्ण होने से पूर्व वो आकृति साधु के अंदर उस समय जो भी भावना होगी, शिखर जी की वंदना कर लूं, विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों की वंदना कर लूं, अथवा कोई केवली श्रुत केवली से शंका समाधान कर लूं, अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर लूं, ये जो भावना होती है वो सिर के ऊपर से उनके एक जो आकार निकलता है आहारक शरीर बोलते हैं उसको, एकदम शुद्ध होता है वो आकार, ऐसे मुनि के शरीर को छोड़ करके ऐसे चला जाता है, और वो जा करके ऐसे अनुश्रेणी गति होती है उसकी, तो अनुश्रेणी में उस आकाश प्रदेश की पंक्ति में जो भी केवली श्रुत केवली अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय तीर्थंकर उनको प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी वंदना करके तत्काल वापस आ जाते हैं। छठे गुणस्थान से पहले उनको वापस लौटना होता है काल पूर्ण होने के, क्योंकि फिर सप्तम गुणस्थान हो जाएगा, तो सप्तम गुणस्थान में वो नहीं रहता, तो इतने अंतर मुहूर्त काल में वो सब काम करके लौट आता है और जो भी शंका समाधान सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है, जो भी दर्शन करने उनको दर्शन हो जाता है। ये महान रिद्धि है, इस काल में नहीं है, कोई बिरले साधु को ही ये रिद्धि होती है। आहारक रिद्धि। तो यहां आचार्य कह रहे हैं कि वो सप्तम गुण स्थान में ऐसे ऐसी पुण्य प्रकृतियों का संचय हो रहा है, लेकिन उसकी तुलना में देखो अरहंत नमोकारो, अरहंत नमो अरहंताणम, अरहंत नमोकारो का अर्थ क्या हो गया, नमो अरहंताणम। इस नमस्कार से सांप्रतिक बंध की तुलना में असंखेज गुण कम्मक है कारोति, वह अरहंत को किया हुआ नमस्कार असंख्यात गुणित पाप कर्मों का क्षय करने वाला होता है। जितना पुण्य का संचय हुआ उससे असंख्यात गुना पाप का अपचय हुआ अर्थात क्षय हुआ। तो ये घाटे का सौदा है या फायदे का, अधिक क्या हो रहा है यही देखते हैं ना। और जो बंद हो रहा है वो भी पुण्यानुबंधी पुण्यों का बंद हो रहा है, वो कोई संसार में फंसाने वाला पुण्य नहीं है। भाव संग्रह ग्रंथ में देवसेन आचार्य महाराज ने लिखा है, सम्माइठी पुण्यम न होई संसार कारणम नियमा, मुखस होई हेउ जय विनियाणम नसो कुणई। सम्यक दृष्टि का पुण्य नियमतः संसार का कारण नहीं होता, वो मोक्ष का ही परोक्ष कारण होता है। एक शर्त बता दी कि यदि वह निदान नहीं करता, सांसारिक सुखों की कामना न करे, तब उसका पुण्य मोक्ष में सहायक होता है। तो मुनिराज में तो निदान होता ही नहीं है। ये जो दुर्ध्यान है वो भावी भोगों की आकांक्षा करना मुनियों में संभव ही नहीं है, वैराग्य के साथ ही नहीं हो सकती भोगों की कांक्षा। तो ऐसी स्थिति में मुनिराज का वो पुण्य मोक्ष का ही कारण बनने वाला है, तो उसका त्याग क्यों करें मुनिराज। इति इसलिए तत्थवि मुनिणम पवित्र प्रसंगादो, उसमें मुनियों की प्रवृत्ति प्रासंगिक है अप्रासंगिक नहीं है। कितनी सुंदर बात कही है उक्तंच, और आचार्य महाराज उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण क्या दे रहे हैं, मूलाचार की गाथा को प्रमाण में दे रहे हैं। क्या प्रमाण दे रहे हैं, अरहंत नमोकारम भावेण यजो करे दिपयड़ मदी सो सव दुख मोखम पावई अचिरेण कालेण। भावेण श्रद्धया सम्यक तो पूर्वकम यह प्रयतमति सावधान चित्त अर्हत नमस्कारं करेदि करोति स अचिरेण कालेन सर्व दुख मोक्षम पावै प्राप्नोति। जो मुनिराज श्रद्धा के साथ अरहंतों को नमस्कार करते हैं और प्रयत्नमति सावधान चित्त होकर के नमस्कार करते हैं, वे सर्व दुखों से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कब कर लेते हैं, अचिरेण कालेन अल्प काल में, बहुत अल्प समय में सर्व दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। कितनी सुंदर बात है। और इसके बाद अनुच्छेद चार में आचार्य कह रहे हैं, तेण इसलिए सोवण भोयण पयाण पच्चावण सत्थ पारंभादि क्रियासु नियमेण अरहंत नमोकारो कायवोत्ति सिद्धम। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि सोते समय, भोजन करते समय, विहार करते समय, कहीं से वापस लौटते समय, शास्त्र प्रारंभ आदि करते समय, इन सभी क्रियाओं में नियम से अरहंतों को नमस्कार करना चाहिए, ये बात सिद्ध हुई। क्या सुंदर बात है, घर से बाहर निकलते समय नमो अरहंताण। तो वो जो उपदेश उसको मिला था सुभग उस बालक को, उसकी पुष्टि हो रही है यहां पर। उन मुनिराज ने प्रथमानुयोग में उस बालक को उपदेश दिया कि हे बालक, हे वत्स, अब तुम जो भी काम करो उस काम को प्रारंभ करते समय नमो अरहंताण भी सात अक्षर बोल लिया करो। और बालक ने वैसा करना प्रारंभ कर दिया। एक भव धारण करके मोक्ष को प्राप्त हो गए सुदर्शन महामुनि। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई, जय धवला जो कि सिद्धांत ग्रंथ है उससे ये बात पुष्ट हो गई कि नमो अरहंताणम केवल बंध का कारण नहीं है, वो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का कारण है। तो प्रश्न क्या था वो जो अपनी एक चर्चा निकली थी कि नहीं, सराग संयम से तो पुण्य का बंध होता है, रत्नत्रय से कर्मों की निर्जरा होती है, रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है। स्वीकार है, रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है, क्योंकि मोक्षोपायो न बंधनोपाय। पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में 211वीं कारिका में अमृतचंद्र सूरी ने लिखा है कि जो मोक्ष का उपाय होता है वो बंध का उपाय नहीं हो सकता। तो रत्नत्रय तो मोक्ष का कारण, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो सराग संयम है, नमो अरहंताण, अरहंतों को किया हुआ नमस्कार है, वो शुभोपयोग होते हुए भी केवल पुण्य बंध का कारण न होकर निर्जरा का कारण है। ये बात इस पंक्ति से प्रमाणित हुई, क्योंकि आचार्य महाराज ने ये नहीं कहा कि अरहंत नमोकारो संपहि रैणत्तयम असंख्य जगुण निर्जरा कारयम इति। ये नहीं कहा कि रत्नत्रय असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण है। प्रसंग क्या चल रहा था? नमो अरहंताणम का प्रसंग चल रहा था। तो आचार्य महाराज ने यह कहा कि नमो अरहंताणम बंध की तुलना में असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण। तो एक बात ध्यान में रखना कि रत्नत्रय तो साधु ने जब से दीक्षा ली है तब से संलेखना तक रहेगा, एक राजमार्ग की अपेक्षा। कभी कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि बीच में निचला गुणस्थान आ जाता है, कभी असंयम का गुणस्थान भी आ जाता है, कभी मिथ्यात्व में भी पतन हो सकता है, फिर वापस स्थितिकरण करके ऊपर आ जाते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर तत्वों का अभ्यास होता है, फिर वैराग्य होता है, फिर दीक्षा होती है और तब मुनिपना प्रकट होता है। इसलिए बिना सम्यक दर्शन के दीक्षा योग्य नहीं है, ऐसा मत है। पर अब बात ऐसी है कि सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, इसको अपन कैसे पहचाने? तो केवल स्थूल रूप से यही देखा जाएगा कि अपन अपनी ओर से बुद्धिपूर्वक कोई भी मिथ्यात्व का भाव अथवा कोई भी मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति न कर रहे हों, ठीक है ना, और दीक्षा ले ली। अब यदि ये कहो कि नहीं, चौथा गुणस्थान हो तभी दीक्षा लो, जब तक गुणस्थान न हो सम्यक दृष्टि का तब तक मत लो दीक्षा, तो अब गुणस्थान का कैसे पता करोगे? गुणस्थान तो केवली भगवान जानते हैं, अथवा अवधि मन परे ज्ञानी भी कथनचित जान सकते हैं। तो क्या करोगे? और चलो ठीक है, इस तरफ से आपने ऐसा लगाया कि ये गुणस्थान हो फिर मुनि दीक्षा लेकर भावलिंगी बन जाना, छठे सातवें में पहुंच जाना। अब उधर से लगा के देखो, कोई मुनिराज है, भावलिंगी मुनिराज है, और ऐसा तो नहीं है कर्म सिद्धांत में कि भावलिंगी मुनिराज कभी वापस द्रव्यलिंगी ना हो? भावलिंगी मुनि है, छठे सातवें गुणस्थान में है, अकस्मात कोई कर्म का ऐसा उदय आ गया, मान लो प्रत्याख्यानावरण का शायद उदय में आ गई, पंचम गुणस्थान में पहुंच गए, भावलिंग तो नहीं रहा ना। पंचम गुणस्थान कोई भावलिंगी साधु का गुणस्थान नहीं है, वो तो संयमा संयम गुणस्थान, श्रावकों का गुणस्थान है। तो मुनिराजों का जो गुणस्थान नहीं है उसमें अगर मुनिराज आ जाए तो वो भावलिंगी तो नहीं रहे, तो अब क्या करें? अथवा अप्रत्याख्यानावरण कषाय उदय में आ गई तो वहां मुनिराजों का जो छठा सातवां गुणस्थान चल रहा था वहां से चौथे गुणस्थान में आ गए, नीचे गिर गए। श्रावकों का भी गुणस्थान नहीं रहा, उससे भी नीचे आ गए, पर अभी सम्यक दृष्टि है, वो द्रव्यलिंगी है। और मान लो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ गई तो सीधा छठे सातवें गुणस्थान से तीसरा गुणस्थान हो गया। मान लो अनंतानुबंधी कषाय उदय में आ गई, औपशमिक सम्यक तो था उनके पास, छठा सातवां गुणस्थान था, अनंतानुबंधी का उदय आ गया, दूसरे गुणस्थान में आ गए। और मान लो मिथ्यात्व का उदय आ गया, पहले गुणस्थान में आ गए, तो अब क्या परामर्श है? जो ये कहते हैं कि इस गुणस्थान के क्रम से ही दीक्षा लेकर आत्मकल्याण संभव है, उनसे प्रश्न है कि यदि कोई साधु अपने भाव लिंग से नीचे आ जाए, द्रव्यलिंगी हो जाए, तब उनके लिए क्या मार्ग है? और मान लो कोई अवधिक ज्ञानी मुनि बता दे उनका गुणस्थान, आप जैसे कोई वहां पहुंच जाए और पूछ ले कि महाराज जी उनका क्या गुणस्थान चल रहा है, वो बता दे कि चौथा चल रहा है, तो क्या करोगे आप? कपड़े पहनाओगे क्या? चौथा गुणस्थान तो चारों गतियों में होता है, क्या करोगे? उनको मुनि रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? या ऐसी शर्त लगाओगे कि मुनि आप छठे सातवें में रहो तभी आप इस मुद्रा में रहना, वरना आपको छोड़ना पड़ेगा? ऐसा कहां लिखा है शास्त्रों में? ऐसा नहीं होता। वो अंतर मुहूर्त में ऊपर के गुणस्थानों में जा सकते हैं। धवला ग्रंथ में ही कितने ऐसे उदाहरण दिए हैं कि एक मुनि महाराज है, वो एक भाव में अधिक से अधिक ग्यारहवें गुणस्थान में कितना अंतराल डाल सकते हैं, अंतर प्ररूपणा में उसका वर्णन आता है धवल ग्रंथ में। जो आठ अनुयोग द्वार है ना, उसमें से जो अंतर अनुगम है उसमें वर्णन आता है कि एक मुनिराज आठ वर्ष की आयु हुई, गर्भ से आठ वर्ष हुए, तो किसी कारण से उनको वैराग्य हुआ, दीक्षा ले ली, पर दीक्षा लेकर वो छठे सातवें गुणस्थान में चले गए और इतनी निर्मलता उनको प्राप्त हो गई कि वो उपशमक श्रेणी पर आरूढ़ होकर ग्यारहवें गुणस्थान में चले गए और वहां से नीचे आ गए। अब नीचे आकर के फिर असंयम का अंतराल, संयमा संयम का अंतराल आदि सब कुछ डालकर, जैसे मान लो वो चौथे गुणस्थान में आ गए, फिर वहां से मिथ्यात्व एक ही भाव में मिथ्यात्व के अंतराल के साथ ग्यारहवें गुणस्थान को दो बार प्राप्त करने वाले जीव कितना काल व्यतीत कर सकते हैं? तो ग्यारहवें गुणस्थान में आए, ग्यारहवें से फिर नीचे आए, सातवें, छठे, और छठे से फिर और नीचे आ गए, यानी द्रव्यलिंगी हो गए और मिथ्यात्व में आ गए। वर्षों व्यतीत कर दिए मिथ्यात्व में, एक पूर्व कोटि की आयु थी उनकी, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है, और 1 करोड़ पूर्वों की एक पूर्व कोटि होती है, तो 8 साल की कोई गिनती नहीं उसमें, इतना अल्पकाल है 8 वर्ष की आयु, और उतना लंबा काल मुनि दीक्षा के साथ उन्होंने व्यतीत किया। और उसके बाद फिर जब आयु पूर्ण होने को थी वापस भावलिंगी बन गए, और 11वें गुणस्थान में उनकी आयु पूर्ण होती है, सर्वार्थ सिद्धि चले जाते हैं। क्या करोगे? मुनियों के विषय में इतना सैद्धांतिक सूक्ष्म अध्ययन किए बिना अपन अधिक बुद्धि को न दौड़ाएं, इसी में अपना कल्याण है। जो साधारण साधु दिखते हैं और जिनकी चर्या में कई दोष भी लगते हैं, वो भी रातों रात प्रायश्चित करके ऐसे शुद्ध बन जाते हैं कि संलेखना के काल में उनकी संलेखना की प्रशंसा जो यहां भरत क्षेत्र में हो रही है, जिनको कई लोग तो साधु ही नहीं समझ रहे हैं, उनकी संलेखना की प्रशंसा विदेह क्षेत्र के समवसरणों में तीर्थंकर के मुख से होती है कि इस समय भरत क्षेत्र में एक ऐसे साधारण साधु है, छोटे साधु हैं लेकिन भावलिंगी साधु हैं, उनकी उत्तम संलेखना हुई है। भले ही वो सौधर्म स्वर्ग में गए और सौधर्म स्वर्ग में भी उनकी आयु भले एक पल्ले की हो, जघन्य आयु हो, पर अपरा पल्लोपम अधिकम, लेकिन फिर भी वो भावलिंगी हो सकते हैं। और जिनको श्रेष्ठतम समझा जाता है, हो सकता है, अभी हम किसी व्यक्ति विशेष पर फोकस करके नहीं बोल रहे हैं, पूरे पंचम काल की हम बात कर रहे हैं, तो पूरे पंचम काल में केवल वर्तमान काल को नहीं ग्रहण करना, कोई भी ऐसे साधु हैं जिनको सबसे अच्छा माना जा रहा है, वो केवली के ज्ञान में हो सकता है वो भावलिंगी ना हो, द्रव्यलिंगी हो। इसलिए समण सुत्तम की 42वीं गाथा में बड़ी सुंदर बात लिखी है। देखो यहां पर जिन धर्म सार नाम का एक ग्रंथ रखा नीचे है, ये इसी तरफ है, नहीं वो, हाँ वो आपने जहां अंगूठा लगाया ना, वो बस वो स्पाइरल वाली, स्पाइरल बाइंडिंग, वो नहीं, स्पाइरल बाइंडिंग ये वाली। जैन धर्मसार बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, लेकिन इसकी प्रतियां अभी उपलब्ध नहीं है। ये सभी ग्रंथों में से जो सारभूत गाथाएं थी उनका संग्रह करके जिनेंद्र वर्णी जी ने बनाया था। फिर कालांतर में और भी गाथाएं इसमें जोड़ करके समण सुत्तम के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। और विशेष आग्रह तो जो था इसको बनाने का, वो आचार्य विनोबा भावे हुआ करते थे, वर्धा में एक पवनार नाम का स्थान है, वहां पर उनका आश्रम था। तो इसमें उन्होंने एक गाथा दी। सारे जैन शास्त्रों का आलोडन करने के बाद उन्होंने गाथाओं का इतना सुंदर संग्रह किया, उन्होंने एक गाथा दी है। निच्छयो दुन्नीयम् को कम्मि वट्टई गुण ठाणे व्यवहारियो यकीरे जोटिदो पुव्व चरेतम्मी। समण सुत्तम की 42वीं गाथा है, इसमें ये लिखा है कि निश्चयतः यह जान पाना दुष्कर है कि कौन से मुनिराज किस गुणस्थान में वर्त रहे हैं, अर्थात कौन से गुणस्थान में वो इस समय विद्यमान है, ये वास्तव में जान पाना दुष्कर है। इसलिए जो उठिदो पुव चरितम में, जो अपनी दीक्षा में स्थिर है, उनके लिए आप दान पूजा आदि सारी व्यावहारिक विनय साधु मानकर करते रहें, इसी में अपना कल्याण है। अगर आपने अपने मन में शंका की तो एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है, जिनेंद्र वर्णी जी ने ही एक पंक्ति लिखी थी कि यदि आप शंका करोगे साधुओं के गुणस्थानों के विषय में तो आपके घर साक्षात कुंदकुंद आचार्य भी आहार नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके माथे पर नहीं लिखा रहेगा कि वो भावलिंगी है। और आप शंका करते रहोगे कि भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है, पड़गहन करने की क्रिया ही भूल जाओगे। खड़े थे पड़गहन के लिए, लेकिन पड़गहन नहीं करोगे आप। तो इसलिए साधुओं को नमोकार मंत्र में नमो अरहंताणम सर्वथा उचित है। जब साधुओं के लिए उचित है, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, सारी क्रियाओं के समय अरहंत को नमस्कार करना योग्य है, क्योंकि अरहंत को किया हुआ नमस्कार पुण्य बंध की तुलना में पाप की निर्जरा का कारण होता है। और पापों की कितनी निर्जरा करता है उसको कंपैरेटिव उन्होंने दिया ना, तुलनात्मक, कि जितना पुण्य संचित हुआ है उससे असंख्यात गुणित पाप झड़ जाएगा। नमो अरहंताण, कितनी अद्भुत बात है। उस बालक को कितने कर्मों का बंध होगा, कितने जन्मों से वो मिथ्या दृष्टि रहा होगा, लेकिन इस जीवन में उसने अंतिम समय तक सम्यक दर्शन तो प्राप्त नहीं किया था, और किया भी हो तो छूट गया था। आयु बंध के समय उसको सम्यक दर्शन नहीं था, तभी तो वो मनुष्य से मनुष्य बना ना। सेठानी का पुत्र कैसे बन गया वो बालक? अगर सम्यक दृष्टि होता तो सम्यक्तंच देवायु में चला जाता, लेकिन नहीं। पर जब सुदर्शन की पर्याय में वो उत्पन्न हुआ और जब उसने सम्यक दर्शन आदि प्राप्त किए, तब बड़े बड़े उपसर्गों को जीतकर, ऐसे उपसर्ग जिसका वर्णन एक ग्रंथ है हमारे पास, आचार्य नय नंदी विरचित सुदंसन चरियु, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, उसका अनुवाद भी है। उस ग्रंथ में जो सुदर्शन मुनिराज पर उपसर्ग हुआ है, उस उपसर्ग को सुनकर या पढ़कर एक बार कोई धीर वीर मनुष्य भी स्वाध्याय कर ले तो उसके अंदर ऐसे कपकपी आ जाएगी। इतना भयंकर उपसर्ग उन्होंने सहन किया, जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ के जीव उस ज्योतिषी देव शंबर के उपसर्ग को सहन किया था, 7 दिन सहन किया था, उसी प्रकार सुदर्शन महामुनि ने अभयमती रानी के जीव का उपसर्ग, जो व्यंतरी बन चुकी थी, उसका उपसर्ग 7 दिनों तक सहन किया। फिर सुदर्शन के उपसर्ग का निवारण करने के लिए, मुनिराज के उपसर्ग का निवारण करने के लिए एक यक्षदेव उपस्थित हो गए थे। और ऐसा नहीं है, देवलोक साधुओं से प्रभावित नहीं होते, कोई बहुत ही निर्मल साधु होते हैं तो देवलोक प्रभावित हो जाते हैं। जैसे सिद्धप्पा स्वामी थे, उनके ऊपर उपसर्ग किया, कुछ दुष्ट महिलाओं ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, दुष्ट बालकों ने उपसर्ग किया। अब देव लोग आ गए थे और जब उन लोगों ने उनसे क्षमा मांगी तब उनको छोड़ा था। ऐसी घटनाएं होती है, देवलोक सब साधुओं से प्रभावित नहीं होते, कोई बिरले साधु होते हैं जिनसे वो प्रभावित होते हैं। साधुओं को देवों से प्रभावित नहीं होना है, ये तो बात ठीक है, पर देव इस तरह से ये नमो अरहंताणम की महिमा का वर्णन था। जैनम जयतु शासनम।